आज जो हम विषय चर्चा करेंगे कर्म, कर्म का जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, जो अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। जब हम काम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट मिलता है तो वो जैसा हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? हमारा जो एक्शन है और उसकी जो रिजल्ट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। यजुर्वेद के अंतिम अध्याय का एक खूबसूरत मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाहा एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। काम करते हुए ही तुम्हें 100 साल तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर ध्यान रखो, काम तुम में चिपकता नहीं है। तो काम करते हुए ही हमें जिंदा रहने की जरूरत है। लाइफ का एक नेचर होता है और उसका ये सिम्टम भी है कि वो एक्टिव होता है। वेद का शब्द है क्रतुमयः पुरुषः, जो आत्मा है, जो जीव है, वो कर्मशील है, उसके नेचर में कर्म है। पर कुछ लोग होते हैं जो ये नहीं जानते हैं कि उनको क्या करना है, हो सकता है इसीलिए वो कुछ करते नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को पता है कि उनको क्या करना चाहिए तो भी नहीं करते। कुछ लोग हैं जो टॉन्स ऑफ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं ये जानने के लिए कि मुझे करना क्या चाहिए। किताबें पढ़ते हैं, गूगल करते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं, सब करते रहते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। पर ये सब जानने के बाद भी बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते। लगता है जैसे हर आदमी अपने अपने ढंग से लाइफ में क्या करना नहीं करना उसकी व्याख्या वो करता रहता है। पर जो जरूरी चीजें जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि लाइफ में काम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए लाइफ में जिंदा रहना भी मुश्किल है। तो संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है, कहते उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथी न हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशति मृगः। शेर जंगल का राजा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शिकार करना बंद कर दे, मेहनत करना बंद कर दे और सोता रहे और अपने आप जानवर छोटे मोटे आते रहेंगे और उसके मुंह में घुसते जाएंगे खाना खाने के लिए। ऐसा नहीं होता है। शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है अपनी मेहनत के लिए। जिनके पास बहुत कुछ ईश्वर की कृपा से है उनको भी काम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आपको खाना खाने के लिए काम करना है या पैसा कमाने के लिए काम करना। ये काम करना लाइफ का ऐसा नेचर है, आपके पास सब कुछ भी हो तो भी आपको काम करना जरूरी है। अगर आप काम नहीं करेंगे जो है वो आप भी नहीं खा सकते, क्योंकि उसको खाने के लिए बॉडी को फिट होना जरूरी है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए और वो एनर्जी आती है काम करने से। हमारे यहाँ एक बहुत सारे लोगों में ये एक समझ है, क्या करना काम करके, सब माया है, सब मोह है, सब छोड़ो, भजन में लगो, ईश्वर भक्ति में सब मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, ईश्वर पर भक्ति करो सब ईश्वर दे देगा। पर गीता का ये बड़ा सुंदर श्लोक है, कहते नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिजैः ऋगुणैः। तुम काम को छोड़ के रह भी नहीं सकते हो, क्या छोड़ोगे? मेहनत करना छोड़ दोगे, बस कमाना छोड़ोगे, सोसाइटी के लिए कुछ करना छोड़ोगे, खाना तो नहीं छोड़ोगे ना, पीना नहीं छोड़ोगे, सोना नहीं छोड़ोगे, टीवी देखना नहीं छोड़ोगे, बैठना नहीं छोड़ोगे, बातें करना नहीं छोड़ोगे, फिर छोड़ा ही क्या? ये भी तो काम है, बाथरूम जाना भी तो काम है। हो सकता है तुम ना ना हो, 1 महीने तक ना ना हो, पर बाथरूम तो जाना पड़ेगा। तो काम छोड़ के रह ही नहीं सकते हो, क्योंकि काम करना ये तुम्हारी मजबूरी होती है। तुम्हारे शरीर की जो बनावट है, सत्व रजत तमो से बना हुआ शरीर है, वो गुण उसको मजबूर करते हैं कि तुम्हें कुछ करना ही है, कुछ नहीं तो आप लेटे रहोगे, टीवी देखोगे, वो भी तो काम है। तो काम तो करना पड़ता ही है, आप चाह कर करो ना चाह के करो। इसलिए कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा चतेपि अप्रसिद्धेद कर्मणः। काम तो करना पड़ेगा अर्जुन, अगर काम नहीं करोगे तुम्हारी शरीर की यात्रा कैसे चलेगी, जॉइनिंग ऑफ लाइफ कैसे होगी। ना करने से काम करना बेटर है, कुछ ना करने से गलत करना भी बेटर है, पर करो तो सही, क्योंकि जब तुम करोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो काम ना करने के लिए उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस है। जैसे रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे काम करें, घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, घूमते रहते हैं। बहुत सारे टीनेजर हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिनको समझ में नहीं आता है क्या करें। काम करने से आपका पेन भी कम होता है, पेन सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, मेंटल पेन भी, और साइकोलॉजिकल पेन तो फिजिकल पेन से भी ज्यादा वर्स्ट होता है, क्योंकि वो आपके लाइफ को कम करता जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूं, बहुत सारे फीलिंग्स आता है। पूछिए उन लोगों से जो रिटायर्ड होने के बाद गोल लेस हैं, क्या अंदर फीलिंग चलती है। पूछिए उन जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग जो कुछ करना नहीं चाहते, वो तभी करना चाहते हैं जब पढ़ाई के हिसाब से कुछ काम मिले, नहीं तो नहीं। पर जब आप कुछ ना कुछ करोगे, आपकी होने का एहसास होगा, मेरे एग्जिस्टेंस का भी कोई मतलब है, कुछ तो किया। अपने बैकयार्ड में अगर एक बैंगन का पौधा भी लगाया और उसमें एक बैंगन भी आया या एक फूल भी आया, तो भी आपको सेटिस्फेक्शन होगा, ये मेरे कारण हुआ है। फिर काम करने वाले कंप्लेन कम करते हैं। आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के लोग बेसिकली होते हैं, एक तो जो बहुत इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, दूसरा जो बहुत बड़ा वर्ग है वो टोकता है, ऐसा नहीं ऐसा ना करके ऐसा करते, अच्छा ये क्यों किया आपने, ऐसा क्यों नहीं किया। वो खुद कुछ नहीं करना है, उनको कंप्लेन करना है। ये जो कंप्लेनिंग नेचर उन लोगों का बहुत ज्यादा बन जाता है जो कुछ नहीं करते या बहुत कम करते। काम करने वाले का कंप्लेनिंग नेचर भी कम होता है। घर में पति पत्नी की भी फाइटिंग का कारण यही है, एक जने करेगा नहीं और जो नहीं करता वही कंप्लेन करता है, खास करके पुरुष लोग कंप्लेन करते हैं, घर झाड़ू नहीं है, साफ नहीं है, साफ नहीं है तो खुद उठ के कर लो, देखना साफ हो जाएगा, फिर कंप्लेन भी नहीं होगा, घर भी साफ हो जाएगा। वो नहीं करने का, कोई दूसरा करे। काम करने से आपके नेचर में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है, आप कंप्लेन करना बंद करेंगे, आप नेगेटिव दिखना बंद हो जाएंगे। जहां भी गड़बड़ी दिखे आपको, वो आपका घर हो, वो आपका बेडरूम हो, वो आपका बाथरूम हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके ऑफिस हो, या कोई कम्युनिटी सर्विस हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप खुद इन्वॉल्व हो जाइए। आप देखेंगे जब आप अंदर घुसने लगेंगे, हो सकता है आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना ढूंढ पाए, पर आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे। रेगुलरली काम करने से आदमी अपने डर को भी ओवरकम करता है, और डर एक ऐसा चीज है हर इंसान को धकेलता है, कहां कोने में धकेलता है, वो कौन सा कोना है जहां आप जाना नहीं चाहते हो, उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में फिर धीरे धीरे हम आदि हो जाते हैं, जो आज तक करते आ रहे हैं बस वही करते, उससे आगे हम एक भी स्टेप नहीं लेते, डर लगता है गलत ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, मेरे से होगा भी नहीं, मेरे से होगा नहीं वही लोग बोलते हैं जो कुछ करते नहीं, करिए गलत भी होगा, होने दीजिए गलत, फिर गलत करते करते आप सीख सकते हैं। जब आप कुछ नई चीज करते हैं, कल तक आप 15-20 साल से 25 साल से 30 साल से आप एक पर्टिकुलर काम करते थे, आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, वकील है, कुछ भी है, अब आपने रिटायरमेंट ले लिया, अब मैं क्या करूं? कुछ करो, सीखो, ट्राई करो, लाइफ में बहुत कुछ है जो आप समाज को दे सकते हो, अपने आप को दे सकते हो, अपने आप को, अपने आप का ग्रोथ करा सकते हो एक दूसरे डायमेंशन से। अभी तक आप फाइनेंशियली ग्रोथ कराया, अब थोड़ा स्पिरिचुअली ग्रोथ करा सकते हो, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो सीखो। कंफर्ट जोन से बाहर जाने की जरूरत है, करो, ट्राई करो, गलत होगा तो दोबारा करो, ट्रेनिंग लो, देखो। तो जैसे ही आप काम करने लगते हैं, आप अपने आप थोड़ा 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 कंफर्ट जोन से भी बाहर आने लगते हैं। और जिस आदमी में ये नेचर बन जाए कि मैं जो कर रहा हूं उससे थोड़ा अलग टाइप का करूंगा, उसे थोड़ा बेटर करूंगा, उसका डर भी जाएगा और लाइफ में अचीवमेंट तो होगा ही। और उससे होगा क्या, आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये जो काम करने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर और एक बहुत बड़ा गुण लाता है, आप जीनियस बन जाते हैं। एक एवरेज आदमी भी जीनियस बन सकता है। एक्सीलेंसी कोई हमेशा नेचुरल टैलेंट पर बेस नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे जो बड़े लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में सफल हुए हैं, इसीलिए नहीं हुए हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है। अगर लाइफ में सक्सेसफुल लोगों की आप बायोडाटा निकालें, उसमें ज्यादातर लोग आप देखेंगे जो बाय बर्थ, जिसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट, उनमें नहीं था। मोस्ट ऑफ गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड वाले लोग को, जिसको आप मानते हैं जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट है, वो लाइफ में बड़े एवरेज मिलते हैं। एवरेज क्यों मिलते? क्योंकि टैलेंट हो जाने से आप अचीव करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। टैलेंट दो तरह का है, या तो आप पूर्व जन्म से साथ लेकर आए हो प्रारब्ध, जिसको आम भाषा में लोग बोल देते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट। दूसरा है, आप मेहनत से हासिल कर सकते हो। एक गुरुकुल में बच्चे पढ़ाई करते थे, एक बच्चा बुद्धि थोड़ी कमजोर थी, क्लास में समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे बच्चे भी उसको मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि टीचर भी बार बार डांटते थे, सबको बड़ा खराब फीलिंग होता था। उसको लगा पढ़ाई मेरी बस की बात नहीं है, उसने पढ़ाई छोड़ दी। और एक दिन आधी रात को जब गुरुकुल में सब सोए हुए हैं, वो गुरुकुल छोड़ के भाग गया अपने घर की ओर। रास्ते में जा रहा है, एक जगह प्यास लगा, देखा गांव के बाहर एक कुआं है, कुएं में बहुत सारे महिलाएं पानी निकाल रही थी। लड़का वहां गया, किसी माता जी से पानी मांगा पीने के लिए, और उन्होंने पानी दिया तो पानी पिया। पानी पीते समय बच्चे ने देखा ये कुएं का जो ऊपर का हिस्सा है पत्थर का है, और पत्थर में बड़े बड़े गड्ढे हुए रखे हैं। तो उसने पूछा, इस गड्ढे को किसने बनाया ये पत्थर के अंदर? महिलाओं ने बोला हंस के कि ये पत्थर के जो गड्ढे, ये तो अपने आप बने हैं। अपने आप कैसे बने? क्या जब आप पत्थर लगाए थे तब पत्थर में वैसे ही गड्ढा था? बोले नहीं नहीं ये हम रस्सी खींचते रहते हैं ना, ये बार बार रस्सी खींचते रहते हैं, वो मिट्टी का मटका ऊपर रखते हैं, तो ये जो मिट्टी का मटका रखने से और ये रस्सी खींचने से ये पत्थरों में ये गड्ढा पड़ गया है। बच्चे को ये समझ में नहीं आया कि पत्थर जैसा इतना कठोर चीज में, मिट्टी का मटका जैसा हल्का चीज और रस्सी, इसको खींचने से गड्ढा पड़ जाता है। उसने पूछा, रस्सी तो कमजोर है, उससे कैसे पत्थर में इतना बड़ा गड्ढा पड़ेगा? बोले एक दिन में थोड़ा ही होता है, बार बार करते रहते हैं, कितने सालों से हम खींचते हैं तो पत्थर में गड्ढा पड़ गया। बच्चा को ये बात कुछ समझ में आ गया, बोला अच्छा, अगर पत्थर में भी गड्ढा किया जा सकता है सिर्फ रस्सी खींच खींच के, तो मैं क्या पत्थर से भी बदतर हूं? मैं भी सीखूंगा। जो लोग 4 दिन में सीखते हैं, मुझे 40 दिन लगेगा, मैं क्यों छोड़ के भागूं? बच्चा वापस गया गुरुकुल में सीखने के लिए, और वही बच्चा आगे जा करके बहुत बड़ा विद्वान बनता है। उसका नाम है वरदराज, आचार्य वरदराज, जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र में एक प्रकांड विद्वान बनते हैं। परिश्रम करने से साध्य भी, इम्पॉसिबल लगने वाला चीज भी पॉसिबल हो जाता है। केवल और केवल मेहनत करने से। दुनिया में जितने भी आज आप एंजॉय करते हैं, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इन्वेंशंस हुआ है या डिस्कवरीज हुआ है, ये उस इंटेलिजेंट और सिस्टमिक हार्ड वर्क का रिजल्ट है जिसको आप आज एंजॉय करते हो। सारा जो मानव सभ्यता है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये इसी तरह इवॉल्व हुआ है उन्हीं लोगों से जो काम करना जानते हैं। दुनिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री आप जानते हो, कोई भी देश जो समृद्ध देश है, उस समृद्धि के साथ एक चीज बहुत जुड़ी हुई है, वहां के लोग हार्ड वर्किंग है, वहां का कल्चर में काम करने वाले को रेस्पेक्ट मिलता है। कोई भी गरीब देश देखें या जिस देश में जितनी गरीबी मिले, जिस सोसाइटी में जितनी गरीबी दिखे, वहां आपको एक चीज बड़ा कॉमन मिलेगा, वहां के वर्क कल्चर बहुत खराब है, वहां काम करने वाले को छोटे नजर से देखा जाता है। जो सोसाइटी में थोड़ा बड़ा हो जाता है वो पहला काम करता है कि वो काम करना बंद कर देता है, दूसरों से काम कराता है, आ काम करने वाले को वो बड़े ह्यूमिलिएटिंग नजर से देखता है। तो किसी भी देश की समृद्धि काम करने के प्रति जो सोशल कलेक्टिव रेस्पेक्ट है उससे आप आंक सकते हैं। आप ऑफिस में हो, आप कॉरपोरेट फील्ड में हो, आप बिजनेस में हो, आप पॉलिटिक्स में हो, इवन स्पिरिचुअलिटी में भी हार्ड वर्किंग की जरूरत है। और जो काम करते हैं उनको रेस्पेक्ट भी मिलने लगता है। घर में देखिए, अच्छा कितना भी प्यारा हो, एक सर्टन एज के बाद अगर काम नहीं करता है, माँ बाप भी उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, परिवार वाले भी, अगर शादीशुदा है, पति हो या पत्नी, उसको भी अच्छी नजर से नहीं देखते, बच्चे भी निकम्मे बाप को या माँ को भी अच्छी नजर से नहीं देखते जो बैठा रहता है या बैठी रहती है, टीवी देखते हैं, काम नहीं करते, कोई नहीं पसंद करता, रिस्पेक्ट तो दूर की बात। पर अगर आप मेहनत करते हैं, इवन आप कम कमाते हैं, आप मजदूर हैं, आपकी कमाई बहुत कम है, पर आप मेहनत करते हैं तो भी आपकी पत्नी आपको रिस्पेक्ट करती है, आपका पति आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपके बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, माँ बाप भी करते हैं। आपकी काम से आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है। आपकी अगर लगता है किसी भी कारण से रिस्पेक्ट कम है तो आप काम करने लगी, आप देखेंगे आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कोवर्कर्स, आपके स्ट्रेंजर्स आपको रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। आपके पास है या नहीं है तो भी काम करने की जरूरत है। और जब आप काम करते हैं, इवन सेल्फिश इंटरेस्ट भी करते हैं, तो भी सोसाइटी को आप सर्व करते हैं। ये डॉक्टर जब मेहनत करता है वो सिर्फ जॉब नहीं करता पैसा कमाने के लिए, उसके कारण सोसाइटी भी सर्व्ड होता है, समाज का भला करता है। इवन एक बिजनेसमैन जब एक दुकान खोल के बैठता है, हम सोचते हैं सेल्फिश है, वो अपने लिए कमाता है, नहीं, वो अपने लिए भी कमाता है भी, और उसके दुकान खोलने से कितने लोगों का भला होता है। वो दुकान नहीं होता तो आप 5 माइल और चल के जाते सामान लाने के लिए, 2 माइल और चल के जाते। लोगों को लगता है मैं क्या समाज सेवा करूं, कुछ नहीं, जो आपको आता है वो करो, पैसे लेकर करो या फ्री में करो या हाफ पैसे से करो, करना जरूरी है, बाकी चीजें सेकेंडरी है। नेचुरली आप अपना वेल्थ भी इकट्ठा करते हैं, कुछ नहीं करने से अगर थोड़ा सा करते हैं दोस्तों आएगा, वो आपका एडन है, आपको नहीं चाहिए वो पैसा, आप दूसरे को डोनेट करोगे, जरूरतमंद व्यक्ति को आप दे सकते हो। पर काम का एक कॉन्सिक्वेंस है कि उसे वेल्थ आता है, और आप काम में लग गए, सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष, मेरे जिंदगी का कोई अर्थ है, मेरे एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस है, मैंने कुछ किया, खुद के लिए हो, फैमिली के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, मैंने कुछ किया, आत्मसंतोष होता है, हमारा अपना हेल्थ। कालिदास विश्वकवि उनके कुमार संभव में लिखते हैं, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, दिस बॉडी इज श्योरली द फॉरमोस्ट इंस्ट्रूमेंट टू परफॉर्म एनी धर्म। लाइफ में कुछ भी अच्छा भी करना है उसके लिए फिजिकली फिट होना जरूरी है ना। आपके घुटने में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, आंखों में प्रॉब्लम हो, पेट खराब हो, डायबिटीज बढ़ चुका हो, ब्लड प्रेशर रहता हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, तो आप क्या दूसरों का हेल्प करेंगे, खुद का करेंगे? अच्छा, ये क्यों होता है? ये जो आजकल ये सब बीमारियां जिनका नाम मैंने गिनाया और भी 10-20 गिना सकते हैं, इनको आप कह सकते हैं राज रोग हैं। राज रोग समझते हैं, रॉयल डिजीज। ये उन्हीं लोगों को होता है जो रॉयल लाइफस्टाइल जीते हैं। गरीबों में ये बीमारी कम होती है, गरीबों की अपनी बीमारी है, माल न्यूट्रिशन के कारण उनकी पेट में प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक होता है, एसिडिटी होती है, उनके हजारों और प्रॉब्लम है। पर ये प्रॉब्लम किसका है? सिंपल भाषा में कहे निकम्मा लोगों की, जो काम नहीं करते। काम क्यों नहीं करते? बहुत रीजन है, मेरे पास बहुत कुछ है, करने की क्या जरूरत है? मैं बहुत ऊंचा आदमी हूं, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे करने की क्या जरूरत है? क्या लोग कहेंगे? यार आलसी हूं। कोई भी रीजन हो, काम न करने से 50 बीमारियां होती हैं। और आज के डेट में तो, आज के जमाने में ज्यादातर लोगों की, जिनके पास खाने का, खाने की इंतजाम है, उनमें से ज्यादातर लोगों की बीमारियां सिर्फ और सिर्फ उनके निकम्मापन के कारण होता है, काम न करने के कारण होता है। न केवल फिजिकल प्रॉब्लम्स, इवन जो मेंटल प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन में जाते हैं, भी यही काम न करने के कारण ज्यादा होता है। रेगुलर काम करने से आपका टेंशन रिलीव होता है, आपके डिप्रेशन, आपके एंगर भी कंट्रोल होते हैं। कभी ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत टेंशन हुआ, अचानक किसी कारण से आप स्ट्रेस में आ गए, बहुत गुस्सा आया, या किसी भी तरह इमोशनली आप बहुत ज्यादा ओवरवेलम्ड हो गए, आपको समझ में नहीं आता है क्या करें, आप सोएंगे भी शांत नहीं होता, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करो, आप देखना कितना जल्दी रिलीव होगा। और ऐसी मोमेंट में तो मेडिटेशन से भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि मेडिटेशन के लिए तो सबसे पहले आपको कूल एंड काम होना पड़ेगा ना, नहीं तो मेडिटेशन क्या होगा? अब बेचैन और होंगे। अब काम करिए, देखिए काम एक नेचुरल रिमेडी है ईश्वर की तरफ से, और काम करने वाले की तो इम्यून सिस्टम है वो भी बढ़ता है, और उससे फायदा क्या होता है? नेचुरली जो रिस्क है हार्ट डिजीज की, स्ट्रोक की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, कैंसर की, बहुत सारे तरह के कैंसर की, डिप्रेशन की, ये रिस्क कम होता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बना रहता है। लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, नींद की गोलियां खाते हैं। काम करिए, आप एक दो घंटे खूब रगड़ के करिए, पसीना बहाइए। अगर कुछ काम नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, थकाइए। पसीना जब जिसका आता है उसकी नींद में कभी गड़बड़ी नहीं होगी। ईश्वर की बड़ी विचित्र व्यवस्था है, सबको बराबर बना देता है। बहुत आपके पास कितना भी हो आप भोग नहीं सकते हो अगर आप काम नहीं करते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? करके देखिए, 5-10 साल तक आप बॉडी से काम नहीं लिया। काम दो तरह का, या तो आप कुछ प्रोडक्टिव काम करिए, क्योंकि लोग आजकल प्रोडक्टिव काम फिजिकली करना मुश्किल है, लाइफस्टाइल है, और भी नए एज की जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें फिजिकली एक्टिव रहना मुश्किल होता है, फिर उनके लिए क्या ऑप्शन है? पर ईश्वर की व्यवस्था वही है, पसीना तो बहाना है। तुम अगर प्रोडक्टिव काम से पसीना नहीं बहा सकते तो जाओ ऑफिस में, काम करना पड़ता है, वो भी जरूरी है, तो क्या करो? एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, योगा करो, उछलो कूदो, कुछ करो, रन करो, बास्केटबॉल खेलो, टेनिस खेलो, बैडमिंटन खेलो, मैराथन करो, करो। करोगे तो खाओगे, करोड़ों का पैसा लेकर बैठे है तो भी सूखी रोटी खानी पड़ती है, और बहुत लोगों को तो रोटी भी नसीब नहीं होती है, उबला हुआ सब्जी खाना पड़ता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, शुगर प्रॉब्लम हो जाता है। पैसा है, मन भी है, क्यों खाने के लिए सिर्फ पैसा इनफ नहीं है, खाने के लिए योग्यता कमानी पड़ती है। गरीब हो या धनी, ईश्वर ने सबको एक कैटेगरी में रखा। बॉडी को फिट रखो, जो मर्जी खाओ, बॉडी फिट रखने के लिए काम करना पड़ता है। अगर काम नहीं कर सकते तो एक्सरसाइज करो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब हम जानना चाहेंगे कि जो हमारा भारतीय परंपरा है, वैदिक व्यवस्था है या हिंदू परंपरा है, उसमें कर्मों का कोई महत्व है? क्योंकि हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं, केवल भारत में नहीं, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वो सबको मिला करके जो जिसको आजकल साउथ एशियन रीजन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, उस रीजन में हम देखते हैं कि वहां काम करने वाले को बड़े छोटे नजर से देखा जाता है, काम करने वाले का रेस्पेक्ट कम होता है वहां। तो क्या ये हमें ट्रेडिशन से ये मिला है? गरीब भी रहेंगे पर काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मूंछ नीचे हो जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारी हमारी सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशन में क्या इसका कोई इंपोर्टेंस था। हमने दो चार श्लोक तो रखे पर सिस्टम को एनालाइज करेंगे। हमारे वैदिक हिंदू व्यवस्था में जीवन का जो लक्ष्य है, द गोल ऑफ लाइफ, जितने भी गोल हैं उनको चार भाग में बांटा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब कुछ अच्छा करने की इच्छा रखना, हर व्यक्ति के अंदर होता है। धन कमाना, ये हर व्यक्ति के अंदर होता है। फिजिकल नीड को फुलफिल करना, जो बॉडी की इच्छाएं हैं, सेंसेस की, उनको फुलफिल करना, काम हर व्यक्ति के अंदर होता है। और मोक्ष, लिबरेशन, एब्सोल्यूट फ्रीडम, दुख से चाहिए, सबके अंदर होता है। ये जो चार गोल है, आपको पता है इन चार जो लक्ष्य है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसका नाम है पुरुषार्थ। ये मेहनत से ही प्राप्त होता है। हमारी सोसाइटी को हमने चार क्लास से डिवाइड किया। हम कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम सिस्टम। वर्ण, जिसमें हमने सोसाइटी को चार तरह से क्लासिफाई किया, एक नेचुरल सिस्टम, उसका अर्थ क्या है कि जो लोग बहुत ज्यादा नॉलेज फील्ड में इन्वॉल्व रहते हैं, जिनकी टेंडेंसी ज्ञान से रिलेटेड चीजों में होता है, उनका प्रोफेशन हो या नॉर्मल लाइफ हो, वो ज्ञान की ओर झुकाव है, वो एक क्वालिटी सब सोसाइटी में होता है, वो एक क्लास, जिसको टेक्निकली हम ब्राह्मण कहते हैं, आज की भाषा में कहेंगे जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सब ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय, जो पावर रिलेटेड चीजों में इंटरेस्ट रखता है, पावर चाहिए, वो पॉलिटिकल पावर हो, फिजिकल पावर हो, आर्मी हो, रूलर्स हो, पुलिस हो। वैश्य, जिसको धन कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, धन कहीं से भी आए, बिजनेस से आए, खेती से आए, पशुपालन से आए, कहीं से भी आए। शूद्र, जो इन तीन कैटेगरी में नहीं आते, जिनको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं या उनके अंदर वो इस तरह के एटीट्यूड नहीं, इनको फिजिकल भी उतने स्ट्रांग नहीं, ना पॉलिटिकल एम्बिशन, ना स्ट्रेटेजी है, ना पैसा कमाना आता है, पता है, तो लेबर क्लास, वर्कर क्लास। पता है इन चार जो क्लासेस हैं, इनको शास्त्रों में क्या कहा जाता है? वर्ण। जाति तो ये नई बीमारी है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण का अर्थ पता है? वर्ण करना। जो व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव से जिस तरह के कर्मों को वर्ण करता है, उससे उसका वर्ण निश्चित होता है। ये वर्ण में भी कर्म छुपा है। और इंडिविजुअल लाइफ को भी हमने चार तरह से बांटा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और सब में आश्रम, चारों तरफ से जहां श्रम ही श्रम हो, काम ही काम हो। काम अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके का होगा। स्टूडेंट लाइफ का काम दूसरा होगा, हाउस होल्डर लाइफ में दूसरे तरह के काम होंगे, रिटायर्ड लाइफ का काम अलग होगा, सन्यासियों का काम अलग। पर काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। आपको पता है हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, हिंदी में आप त्योहार कहते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? पर्व, उत्सव। ये पर्व का क्या मतलब है? वही कर्म से जुड़ा हुआ। पर्व का अर्थ होता है गांठ, जैसे बांस या गन्ना, सुगर केन या बैम्बो ट्रीज आप देखते हैं, उसके बीच बीच में गांठ होता है, मतलब थोड़ी देर थोड़ा तक वो बांस बढ़ता है, फिर एक गांठ है, फिर एक बॉडी है, फिर गांठ है। इस गांठ को पर्व कहते हैं। ये त्योहार उन्हीं लोगों के लिए था और है जो मेहनत करते हैं, जो 24 घंटे बैठा रहता है, वो क्या एंजॉय करेगा? काम करने वाला व्यक्ति को रेस्ट चाहिए, गांठ की तरह थोड़ा रुक जाओ। 6 दिन काम किया, रविवार को रेस्ट करो। जो 6 ही दिन रेस्ट में बैठा है तो उसका रविवार भी क्या होगा? रविवार बेकार है। रविवार वही एंजॉय कर सकते हैं जो सोमवार से शनिवार तक थके हुए हो। तो जो काम करते हैं वो एंजॉय करते हैं, उस एंजॉयमेंट का नाम है उत्सव। ऐतरीय ब्राह्मण का एक सुंदर मैसेज आता है, मैसेज है चरैवेति, कीप मूविंग, चलते रहो, जीवन में कभी रुकना नहीं, थकना नहीं, करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आस्ते भगासिनस्य ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः, शेते पद्यमानस्य चरतिश्चरताश्चरैवेति चरैवेति। सोया हुआ व्यक्ति का भी भाग्य भी सोया हुआ होता है, बैठे हुए आदमी का भाग्य बैठा हुआ होता है, चलते हुए आदमी का भाग्य चलता है। इसलिए चलते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। नाना श्रांता यश्रीरस्ति रोहित सुश्रुमा पापो नृषत वरो जन इंद्र यच्चरत सखा चरैवेति चरैवेति। रोहित सुनो, हमने ये सुना है, जो थकते नहीं है लक्ष्मी वहां नहीं जाती है, सुख वहां नहीं जाता, शांति वहां नहीं जाती। जो थकते नहीं है, इंद्र भी उसी का सखा है, परमात्मा भी उसी का सखा है जो थकता है, काम करता है। इसीलिए चरैवेति, चलते रहो, चलते रहो। चरन वही मधुविंदति चरण स्वादु मुदुम वरम, पश्य सूर्यस्य श्रेयाणम यो न तंद्रयते चरण चरैवेति चरैवेति। देखो, मेहनत करते रहोगे तो मिठास मिलेगा, चलते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे तो जीवन में स्वाद भी होगा। अगर समझ में ना आए, देखो उस सूरज को, उस सूरज की महिमा को, उस सूरज की ग्रेटनेस को, जो चलता रहता है बिना थके। कुछ इंस्पिरेशन लो सूरज से और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। काम करने का महत्व ऐतरीय ब्राह्मण में। काम का रेस्पेक्ट होना जरूरी है, और जिस सोसाइटी में कर्म का महत्व ना हो, सोसाइटी गरीब होगा, दुखी होगा। जिस व्यक्ति में कर्म के प्रति रेस्पेक्ट ना हो, उसका भी गरीबी होना स्वाभाविक है। व्यक्ति जो घूमने के लिए कोलकाता गए, कोलकाता में उनका एक फ्रेंड थे, वो इंजीनियर थे और किसी फैक्ट्री में काम करते थे। घूमने के लिए उन्होंने मित्र के साथ, इंजीनियर मित्र के साथ उस फैक्ट्री चले गए, और उसी दिन उनके फैक्ट्री में कोई मशीन काफी दिनों से खराब पड़ा हुआ था, ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो एक्सपर्ट्स बुलाया था ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से एक्सपर्ट इंजीनियर आए हुए थे और मशीन को ठीक कर रहे थे। बाकी जो हमारा और वो व्यक्ति वहीं पहुंचा जो घूमने के लिए गया था, वो खड़ा होकर देखा। मशीन बहुत बड़ी थी, उसको पलटना था, हेवी था, तो ब्रिटिश इंजीनियर्स ने हेल्प मांगी, कोई हेल्प करो इसको जरा पलटने में। और वो ब्रिटिश इंजीनियर जिनके कपड़े काले हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, ऊपर नीचे मुंह सब जगह काला है, काम कर रहे हैं, पर वो इंजीनियर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। जैसे कि भारत में ट्रेडिशन है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया, पैसा कमाने लग गया, पोस्ट पर आ गया, अकड़ में रहते हैं, ये सब काम छोटे लोगों का है। इंजीनियर से देखता है अपने से सबोर्डिनेट को, सबोर्डिनेट उससे नीचे को, उससे नीचे पियन को। तब तक ब्रिटिश इंजीनियर समझ गए, वो खुद ही दो चार जो भी थे मेहनत करके उसको पलटा। मित्र बाहर आए, उनको एक शक लगा, उन्होंने एक नोट लिखा किसी न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर का ये सार था कि हमारे देश की जो उनका समझ था, पर बहुत राइट अंडरस्टैंडिंग है, जिस देश के लोगों में काम के प्रति रेस्पेक्ट ना हो, काम कैसा भी हो, टॉयलेट क्लीनिंग करना हो, रोड साफ करना हो, घर साफ करना हो, मशीन का काम करना हो, या ऑफिस में बैठ के देश चलाना हो, या लैबोरेटरी में रिसर्च करना, काम कैसा हो, काम के प्रति जिस देश में रेस्पेक्ट ना हो, वो देश तो गरीब रहेगा ही रहेगा। ये जरूर ध्यान रखना, धनी गरीबी का भी एक संबंध इस काम के प्रति रेस्पेक्ट या डिसरेस्पेक्ट से होता है। हमारे देश में अगर एक आदमी बेरोजगार है, थोड़ा सा कमाता है, अपना सामान अपना बैग उठा के खुद घूमता है, थोड़ा सा अच्छा सा पैसा आ गया, अब अपना हल्का सा बैग को भी खुद नहीं उठाता है, कुली कराता है, नौकर से उठाता है, पीएन से उठाता है ऑफिस में। बहुत सारे आप भारत में देखेंगे ऑफिसर्स होंगे, वो अपने अटैच भी खुद नहीं उठाते, पीएन उठा के जाता है। क्यों भाई? डायबिटीज की गोली खाना मंजूर है, बीपी की गोली खाना मंजूर है, रात के सोते समय स्लीपिंग पिल खाना जरूरी है, पर अपना बैग नहीं उठा सकते, खून ढिल जाएगा, इज्जत चला जाएगा। जो अच्छे माँ बाप हैं उनके लिए जरूरी है कि बचपन से बच्चों के अंदर ये भाव डालें। हमारे लोग इसीलिए बिगड़े हुए हैं क्योंकि बचपन से उनके माँ बाप भी वैसे ही थे, कि बच्चों को सिखाया जाए कि हर काम वैल्यूएबल है, हर काम ऑनरेबल है। आवर किड्स शुड लर्न टू रेस्पेक्ट वर्क एंड दोज हु आर वर्किंग। काम छोटा नहीं, बड़ा नहीं, कंप्यूटर में बैठ के काम करने वाले के काम का उतना ही रेस्पेक्ट होना चाहिए जितना जो आपके बैकयार्ड में साफ करता है या आपके घर में अगर साफ करने आता है उसका। काम को गंदा समझने वाला व्यक्ति, सोसाइटी, देश हमेशा दुखी, गरीब, करप्ट होते हैं। और जिस व्यक्ति में, जिस सोसाइटी में और जिस देश में काम को रेस्पेक्ट मिलता है, उस देश में, उस सोसाइटी में, उस व्यक्ति में सुख ज्यादा होता है, धन भी होता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तुम अगर चाहते हो कि ईश्वर को प्रसन्न करना है तो अपने कर्मों से उसकी उपासना करो, तो सिद्धि मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो खुद परिश्रम करता है। अगले बार हम चर्चा करेंगे कर्म और उसका फल का क्या संबंध है, हम जो काम करते हैं उसका फल हमें हमेशा वैसा क्यों नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए, इन सब चीजों की डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट टाइम करेंगे। आप सबको नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।